प्रिया पॉडकास्ट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। कुर्सी की पेटी बात दीजिए क्योंकि माहौल अब सुधरने वाला है।
हाय हेलो एंड वेलकम टू पॉपपीडिया पॉडकास्ट। माय नेम इज कुणाल, आई एम सिटिंग विद यश एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस पॉडकास्ट विद गोपाल दत्त सर एंड आई वांट एवरीवन क्लैप्स फॉर गोपाल दत्त। एक्चुअली नेवर माइट हैव थॉट कि आपके साथ यहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे, बट हम करते रहते हैं प्रयोगशाला पे। एंड हाउ डू यू लाइक दिस स्पेस?
यह बहुत सुंदर स्पेस है और क्या बढ़िया यहाँ ऐसा और बहुत सही ऐसा, वो इंटीमेट स्पेसेस का मज़ा अलग है और थिएटर में तो खास तौर से क्योंकि आप इतने करीब हो ना कि ऑडियंस भी ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ द प्ले है।
Yes,
yes. तो वो बहुत सुंदर है, मतलब मैं तो
बट दैट्स द थिंग ऑफ आवर पॉडकास्ट एज़ वेल कि ऑडियंस इज द पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन।
करेक्ट।
सो लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड टू द कन्वर्सेशन यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड जस्ट ऐड।
एंड तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द पॉडकास्ट।
प्लीज।
पहला क्वेश्चन है कि एंड बिकॉज़ वी आर सिटिंग एट प्रयोगशाला द थिएटर एंड यू हैव बीन डूइंग थिएटर फॉर ओवर 20 इयर्स राइट, सो हाउ इज द मीनिंग ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ थिएटर चेंज फॉर यू? और उसके ऊपर मेनी पीपल व्हेन दे अचीव अ स्पेक्टेकल ऑफ लार्जर ऑडियंस, व्हेन दे टच फेम, व्हेन दे टच लाइक द रूट्स ऑफ सिनेमा, तो दे ऑफन फील बैड एंड नॉन डिजायरस टू कम टू द स्टेज राइट। डू यू नाउ आफ्टर 20 इयर्स फील दिस शाइनेस कि अब मेरे को स्टेज पे नहीं जाना है? एंड हाउ हैज बेसिकली द मीनिंग एंड द परसेप्शन टुवर्ड्स थिएटर हैज चेंज फॉर यू ओवर ऑल दिस इयर्स?
नहीं, आई थिंक जो आप कह रहे हो ना उसका एग्जैक्टली उल्टा है।
ओके।
कि जब आप बहुत दिन तक दूसरे मीडियम में काम कर रहे होते हो, भले ही वो टेलीविज़न हो या सिनेमा हो, तो आपको लगता है कि मैं कब जाके थिएटर करूँगा, क्योंकि एक्चुअली थिएटर टाइम मांगता है। थिएटर में एटलीस्ट तो 2 महीने का तो रिहर्सल टाइम आपको चाहिए, तो वो बहुत ऐसा लगता है कि कब मैं वापस जाऊँगा। ऐसा नहीं होता कि मैं कब अब नहीं करूँगा, बल्कि उल्टा है कि आपको लगता है कि यार मैं कब जाके एक प्ले करूंगा और कब। अच्छा। तो हाँ, मुझे तो बहुत ऐसा लगता
है कि नंबर प्ले अ रोल इन योर माइंड, क्योंकि इफ यू आर डूइंग अ स्केच फॉर EIB पर से और इफ यू आर डूइंग अ स्केच ऑन इंटरनेट और कोई फिल्म कर रहे हो एंड देन यू आर डूइंग थिएटर इन सच इंडी स्पेसेस जहां पे 150 लोग 200 लोग आ रहे हैं, तो डज दैट मैटर टू यू?
नॉट एट ऑल। मैं अभी किसी को बोल रहा था कि क्वालिटी ऑडियंस मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। जो मतलब, और मेरा हमेशा कहना है, जैसे इस थिएटर का तो नाम ही प्रयोगशाला है, मेरा कहना है कि थिएटर ना एक लैब की तरह है।
अच्छा।
जहां आप न्यू आइडियाज़, नए जो आर्ट के जो एक्सप्रेशन है वो आप टेस्ट करते हो।
हाँ, हाँ, हाँ,
और फिर हमने खुद देखा है बहुत सारे छोटे प्लेस से बड़ी फिल्में बन गई हैं।
हाँ,
और बहुत डिफ़िकल्ट आइडियाज़ आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि आप कि ऑडियंस भी आपके साथ होती है एक तरह से। जैसे दूसरी जगह ऑडियंस में एक वो है कि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे एंटरटेन होना है, यहाँ ऑडियंस आपके साथ है, वो आपके आपके जो जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो भी चाहती है कि ये
कहीं
सफल हो जाए। हाँ,
क्या बात है।
तो वो बहुत, ये जो कोऑपरेशन है, आई थिंक दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ थिएटर।
Nice. So like your perception of theater, has it changed throughout time?
Not at all. मतलब मुझे तो बल्कि change in a positive sense. मुझे अब लगता है कि यार और क्योंकि अब आप कुछ करते हो तो audience देखने आ जाती है, तो now you can explore new ideas और you can do थोड़ा difficult plays, जैसे literature, मेरा हमेशा कहना है कि जो हमारा cinema है, television है, उसका literature से कोई connection नहीं, लेकिन थिएटर का है। थिएटर में आज भी हम जो अच्छा लिटरेचर है, अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छे नॉवल हैं, उनको हम प्रेजेंट करते हैं और कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छे डिफ़िकल्ट आर्टिस्टिक आइडियाज़ यहाँ मतलब।
एंड इज दैट व्हाट यू मीन बाई, क्योंकि व्हाइल वी आर रिसर्चिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट, तो यू आर सेइंग कि द आई हैव लॉस्ट माय इंटरेस्ट फ्रॉम रीडिंग फिक्शन और I want to read more non-fiction, more biopics, and you said कि Indian culture की folklores जो है, they are so exotic और उनपे उतना काम ही नहीं हुआ।
काम ही नहीं हुआ है, हाँ।
Do you mean कि वो उन stories को लेके you want to make theater out of it?
हाँ, मतलब सभी ने किया है, not just me, मतलब जितने बड़े writers हैं सब ने, जैसे गिरीश कारनाट सर से लेके सब ने जो folklores हैं उनको लेके बड़े plays बनाए, चाहे वो नागमंडलम हो, चाहे ये आती हो, चाहे तो वो हम लोग अभी वो एक्सप्लोर ढंग से किया नहीं है. हम अभी भी मार्वल के का सिनेमा देख रहे हैं, उससे बहुत बड़ी कहानियाँ हमारे पास यहाँ हैं.
yes.
मतलब महाभारत में आप घुस जाओ तो ऐसी कहानियाँ हैं कि आपको लगेगा कि हाँ. तो यस, मुझे लगता है कि वो करना चाहिए हमको एक्सप्लोर.
आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट म्यूजिक. म्यूजिक से आपका क्या रिलेशनशिप, पहले तो क्या रिलेशनशिप है म्यूजिक के साथ?
यार मैं हमेशा से, मुझे म्यूज़िक का शौक़ था और मैंने थोड़ा बहुत सीखा है शुरुआत में. मैंने 2 साल सितार भी सीखा था NHT जाने से पहले. फिर मुझे हमेशा से म्यूज़िक बहुत पसंद है और म्यूज़िकल थिएटर बहुत पसंद है. एक्चुअली मैं, मेरी बिगिनिंग भी म्यूज़िकल थिएटर से ही हुई. मतलब बहुत ऐसा, हम लोग एक वो अंधेर नगरी नाटक जो है उससे शुरुआत हुई, पूरा म्यूज़िकल है. तो फिर मैं NHT गया तो मैंने कारण जी के साथ काम किया. मैं एक प्ले में उनके एक्टिंग भी की और उनका असिस्टेंट भी था म्यूज़िक में.
अच्छा.
तो म्यूज़िक से मेरा बड़ा लगाव है. और फिर शुभा जी के साथ मैं अभी काम करता हूँ, शुभा मुद्गल जी के. और मेरी टीम में शांतनु हैं, वो शुभा जी के शिष्य हैं, उनसे म्यूज़िक सीख रहे हैं. और सिद्धार्थ है, वो अनीश, डॉक्टर अनीश प्रधान जी से तबला सीखते हैं. तो इन लोगों से मिलने से पहले मुझे लगता था मुझे बहुत म्यूज़िक आता है, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे समझ आ गया कि ये बहुत बड़ी दुनिया है.
हाँ, वो तो है. और मैं आपको ये भी पूछना चाहता था कि म्यूज़िक और थिएटर का जो रिलेशनशिप है.
हाँ.
कि थिएटर में, क्योंकि काफ़ी बार जो है म्यूज़िक का ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इंसान को, वो इमोशन बाहर तक ले आता है.
करेक्ट.
वो चीज़ आपने और करो थिएटर में भी, आपने कहीं पे मेंशन किया कि आप म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हैं और पूरा वो म्यूज़िकल वही है कि वो पूरा म्यूज़िक से भरा हुआ है.
हाँ.
तो म्यूज़िक और कॉमेडी स्पेशली, हाउ डू यू सी दैट एंड हाउ डू यू यूज़ दैट टू मेक दिस और करो थिएटर?
हाँ, तो इसमें 2 पार्ट हैं. एक तो पहला पार्ट जो है वो है ये कि हमारा जो पूरा ट्रेडिशन है वो म्यूज़िकल थिएटर का ही है. चाहे हमारे जितने भी फोक फॉर्म्स हैं, वो कोई भी ऐसा वो नहीं है रियलिस्टिक और वर्बल नहीं है. हाँ. वो सब म्यूज़िकल है, चाहे वो यक्षगाना हो, सब सब में म्यूज़िक एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है. बट दूसरा पार्ट है कि और करो थिएटर एक्चुअली कोई उस तरह से थिएटर पीस नहीं है. तो मेरे जितने पुराने नाटकों के गाने थे, अब वो नाटक तो बंद हो चुके हैं. और वो गाने बहुत लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत एंटरटेनिंग है, जब मैं ऐसे भी गाता था. तो मुझे लगा कि अब वो नाटक के साथ साथ गाने भी मर रहे हैं. तो फिर मैंने सोचा कि उन गानों को लेके और एक दो गाने, जो एक्चुअली उसमें 2 तरह के गाने हैं. एक गानों को मैं बोलता हूँ मंच पर वाले गाने. हाँ. जो मंच पे ही, एक मंच पर है जो हमारे पर्सनल एंटरटेनमेंट के नाच रिहर्सल के बाद के गाने. तो दोनों को मिला के ये मैंने ट्राई किया कि थोड़ा कॉमेडी और म्यूज़िक का एक्सपेरिमेंट करें. तो पुराने नाटकों के गाने हैं और थोड़ा बहुत कॉमेंट्री है और थोड़ा एंटरटेनिंग गाने. तो थोड़ा आई थिंक आप लोगों को मजा आएगा. लोग
इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार फॉर्मेट है.
एंड दिस फॉर्मेट, ये जो एक्सपेरिमेंटेशन की आपने बात की कि हमने गाने को थिएटर में, एंड यू आल्सो सेड कि इट्स नॉट अ लाइक अ ट्रेडिशनल थिएटर पीस, राइट? बट इट्स स्टिल थिएटर, राइट?
इट इज स्टिल थिएटर. इट टॉक्स अबाउट थिएटर,
बट एज यू सेड इट्स नॉट ट्रेडिशनल थिएटर. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि Is this because of time कि आप इतने time से ये कर रहे हो, और because you have done so much theater, तो now you want to maintain a spark between you and theater, so you want to experiment inside it, or is it something else?
No, as I said कि मुझे लग रहा था कि यार ये गाने खो जाएंगे.
हाँ.
और धीरे धीरे मैं भी भूल रहा हूँ, और मैं बहुत सारे अपने पुराने नाटकों के गाने भूल भी चुका हूँ.
हाँ.
तो मुझे, मेरा था कि किसी तरह से ये गाने बचा लें हम. तो वो गानों को बचाने के चक्कर में ये, और तो मैंने वो गाने सेलेक्ट किए, क्योंकि थिएटर में एक्चुअली गाने पार्ट ऑफ द प्ले होते हैं. नैरेटिव का पार्ट होते हैं. तो ऐसे गाने जो विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट के भी लोगों को समझ में आ जाएं और मज़ेदार लगे, वैसे गाने.
सच एज
मेन सॉन्ग और करो थिएटर.
हो जाए.
यार वो हम शाम को गाने वाले हैं.
हाँ.
तो आप लोग शाम को जरूर देखिए उसमें आपको.
या.
हाँ.
और we were watching your interviews and you often talk about Zen philosophy, right? And you have said ki main bahut root ho chuka hu is philosophy.
Mujhe bahut sahi lagti hain Zen stories.
So what I wanted to know is ki, and because you know me and Yash, when we started doing this podcast, hum log ne pehle Albert Camus padha tha aur wo sab we used to read. Aur wo sab, it used to attract us very much. Kuch samajh nahi aata tha, but you know, baatein karne mein bahut acha lagta tha. And the thing with Eastern philosophy was कि वो ऊपर ऊपर से इट डजंट लुक गुड, राइट? वो अगर ऊपर से पढ़ो इट डजंट हैव डेप्थ, इट डजंट हैव एनी डेप्थ अगर ऊपर से पढ़ो तो. एंड यू टॉक अबाउट जैन फिलोसॉफी विद सो मच पैशन, यू टॉक अबाउट दिस ईस्टर्न आइडियाज विद सो मच पैशन. सो अबाउट दिस जैन लाइफस्टाइल फॉर यू इज, हाउ डज इट अफेक्ट योर वर्क एंड डज इट अफेक्ट द वे यू डू थिएटर, द वे यू राइट एनीथिंग, द वे यू राइट सॉन्ग्स, एंड डज इट हैव एन अफेक्ट ऑन योर राइटिंग प्रोसेस?
यार मुझे उतना पता नहीं, बिकॉज राइटिंग प्रोसेस क्या होता है कि बिकॉज वी आर कमर्शियल राइटर्स एक्चुअली, जो मैं अपने लिए लिखता हूँ उसमें डेफिनेटली, बट जो कमर्शियल राइटिंग है उसमें यू आर राइटिंग फॉर समबडी, समबडी इज पेइंग यू फॉर टू राइट, तो उसमें आई थिंक उतना नहीं है. लेकिन जो मेरा पर्सनल वो है उसमें तो मुझे हमेशा लगता है कि वो जो जेन का जो मेन वो है ना, कि बहुत कम में वो बहुत बड़ी बात कह देते हैं. तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि ये जो जो भी आप लिख रहे हो उसमें, वो खैर बहुत सारे राइटर्स करते हैं कि कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस अगर उसके बिना काम चल सकता है तो वो नहीं होना चाहिए. ये मुझे लगता है कि ये जेन की ही बात है. कि बहुत छोटे में अगर, क्योंकि उनकी दो दो लाइन की कहानियाँ होती हैं और बहुत बड़े मीनिंग वाली होती है, तो वो उसका इम्पैक्ट तो आई थिंक इनडायरेक्टली तो है ही, बट एज अ कॉन्शियस आई डोंट नो.
अच्छा, ओके.
बट इट डज अफेक्ट योर थिंकिंग, कि आप सबट्रैक्टिव थिंकिंग ज़्यादा करते हो, कि मे बी इट कुड बी सेड इन अ फ्यू वर्ड्स.
करेक्ट,
गॉट. सो आप जैसे कि थिएटर की बात है, तो जब भी कभी भी आप परफॉर्म कर रहे हो, व्हाट डू यू डू बिफोर परफॉर्मिंग एंड व्हाट डू यू डू लाइक after performing, what's your routine while performing,
and does that anxiety still affect?
That butterfly in the stomach to wo aaj bhi hoti hai, chahe 25-50 shows kar liye aapne, wo main stage pe jaane se pehle ka jo wo hota hai, wo
even in the process of it.
So wo to hai hi, and I think wo achhi cheez hai, because wo ek nervous energy aapko ek
tick de deti hai,
kick deti hai ki aap जाके वहाँ.
एग्जैक्टली,
तो वो तो हमेशा ही होता है और होना ही चाहिए मुझे लगता है. तो मेरा प्लेस से पहले मेरे को बहुत होती है, और मेरा जो प्रोसेस है, मैं ठीक एक घंटा पहले अगर प्ले है तो मैं पूरा प्ले रिवाइज कर रहा होता हूँ मन में विद एवरी डायलॉग. तो वो मेरे को बहुत एंजाइटी होती है, बट आई थिंक वही फन है. और जब फिर वो हो जाता है तो आप यू फील सो लाइट कि आपने कुछ एक बहुत बड़ा बर्तन कहीं जाके रख दिया है.
एंड बिफोर आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांटेड टू नो कि यू रेकमेंड अस सम बुक्स एंड सम प्लेस दैट यू थिंक एवरीवन शुड वॉच और एवरीवन शुड रीड.
यार वो तो बहुत लंबी होगी लिस्ट, बट मुझे लगता है कि जो इंडियन प्लेज है ना, जैसे हम बाहर के, हम लोग क्योंकि इतना हमारे में बाहर का इन्फ्लुएंस है, और ड्रामा जो मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा है वो आइडिया ही बाहर से आया, तो हमको वो सब शेक्सपियर से लेके, ब्रेक्ट से लेके, सब चेखॉव से लेके, वो तो हमको किया ही है. बट उस चक्कर में हम जो अपने प्लेज हैं, अपनी कहानियाँ हैं, वो मुझे लगता है हम उतना ढंग से उनको एक्सप्लोर हमने किया नहीं है. जैसे मुझे लगता है कि हर आदमी के पास अंधायुग तो होना ही चाहिए.
अच्छा.
अंधायुग एक नाटक है जो हर घर में होना चाहिए, हर क्रिएटिव आदमी के पास होना चाहिए, चाहे वो एक्टर हो या ना हो, चाहे आप पोएट्री करते हो.
अच्छा.
चाहे आप म्यूज़िक करते हो, वो क्योंकि वो आप पढ़ोगे तो वो इतना वो सब कुछ है उसमें, म्यूज़िक है उसमें, पोएट्री है उसमें, ड्रामा है उसमें, डायलॉग्स ऐसे ऐसे हैं कि.
अच्छा.
तो ऐसे बहुत सारे प्लेज हैं, जैसे तेंदुलकर के जो प्लेज हैं, फिर चाहे गिरीश कारनाट के जो प्लेज हैं, वो सब तो हमको होने ही चाहिए मतलब हमारे पास. और वैसा ही इंडियन लिटरेचर को भी हमको थोड़ा, और क्योंकि अब हम थोड़ा रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमारा हमारी जो अपनी चीज़ें हैं वो कितनी वैल्यूबल है. जैसे अगर आप लिटरेचर में भी जाएँ, जैसा जैसे निर्मल वर्मा एक राइटर है, वो जैसा लिख रहे थे आज से 25-30 साल पहले, वो इतना इतना डेप्थ है उसमें, इतना मतलब इतना आर्टिस्टिकली ब्यूटीफुल राइटिंग है वो, कि हमने एक्सप्लोर नहीं किया, बट वो बाकी फ्रेंच में ट्रांसलेटेड है, इंग्लिश में, दुनिया भर में वो उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे अपने लोगों को बहुत कम पता है।
और निर्मल वर्मा ने उस टाइम पे अल्बेर कमू की फ्रेंच से लेके
ट्रांसलेट किए हैं सब
हमारे लिए।
हाँ, और खूबसूरत ट्रांसलेशन है मतलब। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जो राइटर्स हैं, चाहे वो सभी मतलब अभी के जो फेवरेट राइटर है विनोद कुमार शुक्ल, उनको वो उनकी राइटिंग एक अलग लेवल है। मतलब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर वो अंग्रेजी में लिख रहे होते तो इस वक्त वो सारे बड़े पुरस्कार उनके पास होते।
तो बट आपको ऐसा लगता है कि ये जो राइटर्स है निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, वो सब 40 साल बाद या 50 साल बाद उनका एक दौर आएगा कि जहाँ पे सब लोग वहीं पढ़ रहे होंगे?
मुझे लगता है, मतलब मुझे, क्योंकि वो बहुत बड़ी राइटिंग है वो, अभी वो जिस दिन रियलाइज होगी लोगों को उस जैसे उनकी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें इतना, वो उनकी जो कविता है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, वो इतनी बड़ी कविता है। तो वो वही है कि एक बार वो जब मासेज में जब वो चली जाएगी तब लोगों को रियलाइज होगा कि वो ये कितना बड़ा आर्ट का मतलब कला का काम है।
और मेनस्ट्रीम राइटर्स, मेनस्ट्रीम इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू एज वेल, जब 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 ये लोग, जैसे कि आपने हमारे पॉडकास्ट पे विनोद कुमार शुक्ल की बात की, निर्मल वर्मा की बात की, देन पीपल स्टार्ट टू डू, पीपल डू स्टार्ट टू रीड इट, राइट? मैं जब छोटा था तब मैंने मानव कॉल का एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे वो विनोद कुमार शुक्ल की बात,
हम सब लोग उनके, हम सब उनके फैन हैं।
हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि अगर ये पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। एंड इट डज हैपन, राइट? वो चेन फिर वो चलती रहती है।
करेक्ट 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 करेक्ट।
एंड बिकॉज नाउ हम इंटरनेट पे आ गए हैं, एंड यू हैव बीन अ इंटरनेट सेंसेशन सिंस 2014-15
पॉपुलर।
आई मीन आई एम श्योर सब लोगों ने यहाँ पे AIB के वीडियोज देखे ही होंगे, बट नाउ वो जो 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 कंटेंट की लिमिट होती है, इट्स बीन टच नाउ समथिंग। अब लोग थक गए वो जो, क्योंकि वो जो रियलिज्म वाला भी जो कॉन्सेप्ट था जो AIB ने, जो TVF ने स्टार्ट किया था, उससे भी अब लोग थक गए। एंड दैट्स व्हाट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, व्हिच वाज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटरनेट कल्चर दैट करंटली इज डिक्टेटिंग द होल वेव ऑफ कंटेंट? एंड यू वर विद AIB अर्लियर विद द स्केचेस एंड व्हेन इंटरनेट वाज बेयरली अ थिंग, एंड यू हैव सीन इट इवॉल्विंग, आर यू टायर्ड ऑफ हाउ इंटरनेट कंटेंट इज बीइंग फॉर्मड राइट नाउ एंड विद द वॉल्यूम ऑफ इट टू?
हाँ, मतलब वो आ रहा है। देखो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है कि एक तो मुझे उसमें अच्छी बात जो लगती है कि नाउ एवरीवन हैज दिस पावर टू क्रिएट। अगर आपके अंदर कुछ है, इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग यू कैन, फिर वो पब्लिक में है कि वो उसको पसंद करे या ना करे, तो वो फ्रीडम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बट उसका ये है कि वो इतना उस चक्कर में क्या होता है कि इतना वो फ्लड आ चुका है कि सबको लगता है कि एक भी आइडिया आता है तो लोगों को लगता है कि मैं यूनिक है। बट मैं इसीलिए, जैसे मैं ये पोइट्री के सेंस में बहुत बार कहता हूँ कि लोगों को एक आइडिया आता है और वो कहते हैं कि मुझे, भाई आप उससे पहले देखो तो सही, सेम थॉट पे कितने लोगों ने कितनी चीज़ें कर ली हैं, अब क्या उसके बाद आपके पास कुछ नया कहने को है, तब तो आप कहो। लेकिन अगर मेरे पास, मैं क्योंकि पहले लोगों ने इतना, और या तो उसी थॉट का एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, एक नया परसेप्शन क्या आपके पास है, तब तो वो इम्पोर्टेंट होगा। नहीं तो ये तो कह ही चुके हैं ना लोग कि प्यार पे पोइट्री, प्यार पे शायरी 400-500 साल से तो इतिहास है हमारे पास उसका, मीर से लेके गालिब तक। तो तुम ऐसा क्या कह रहे हो जो उससे बड़ा हो जाएगा? तो मेरे को लगता है कि इसलिए वो हर चीज़ का की पढ़ाई, उसका उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिंपल स्केच मेकिंग ही क्यों ना हो, जोक ही क्यों ना हो। अच्छा। क्या मतलब, अगर आप मॉन्टी पाइथन देखो, मॉन्टी पाइथन ने क्या किस लेवल पे वो ले गए हैं स्केच कॉमेडी को। तो अगर आप कुछ बना रहे हो तो थोड़ा सा उसका रिसर्च, उसकी पढ़ाई करेंगे तो आपको भी एक वो नया विजन मिलेगा कि इसको और किस हाइट तक आगे ले जा सकते हैं।
पर फिर वो भी है कि द मीडियम ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एंट्री लेवल पे ही काफ़ी लोगों को शट डाउन कर देती है। जब जब लोग देखते हैं कि ओ देयर हैव बीन सो मेनी थिंग्स मेड, तो अब मैं क्या बनाऊँ, लाइक ऐसे लाइक बिलिटलमेंट आ जाता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में,
नहीं
इज अ ह्यूज प्रॉब्लम.
नहीं नहीं बट वो अगर आप थोड़ा रिसर्च करोगे पढ़ोगे तो देन आपको नए आइडियाज़ भी आएंगे. ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है ये कहना गलत होगा कि एंट्री लेवल पे ही बंद हो जाता है. नहीं, आप देखोगे अगर वो आपको इंस्पायर ही करेगा कोई भी चीज़ पढ़ाई. अगर मैं मान लो एक स्केच सोच रहा हूँ और अगर मैं पूरा स्केच का हिस्ट्री देखूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँ कि नहीं यार अब मैं नहीं करता. तो अगर अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब वो आइडिया ही आपका अच्छा नहीं है. देन यू विल लुक फॉर न्यू आइडियाज.
और डेविड लिंच का एक कोट भी है कि व्हेन न्यू स्क्रीन राइटर्स कम इनटू द इंडस्ट्री दे हैव बीन एवरीथिंग इज स्पोकन एंड देन इज लाइक यस इट हैज बट नॉट बाय यू.
करेक्ट. हां और आपने जो दुनिया देखी है आपका जो परसेप्शन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहा गया ना. करेक्ट.
एंड दिस आई वांट टू नो एज एन आर्टिस्ट फॉर यू इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव समथिंग न्यू to always perform or to always say ki kuch nayi cheez honi chahiye is very important to you because the way you have been talking since the last 5 minutes about ki kuch naya aana chahiye ya learn the history and find some different perception something rooted into yourself. So what is it uniqueness to oneself or is it something new in its total sense?
No it's like आपका क्या नया, आप क्या उसको नया ट्विस्ट दे रहे हो, आपका नया आपका परसेप्शन क्या है. है ना, वो ही उस चीज़ को यूनिक और न्यू बना देगा. तो जो भी जैसे मैं सेम नहीं तो फिर बिल्कुल ये हो जाएगा. एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि फोकलोर आप करो है ना, बट वो फोकलोर्स को आपका विजन क्या है, आप उसको कैसे कंटेम्प्रराइज कर रहे हो वही उसको इंटरेस्टिंग बनाएगा. नहीं तो महाभारत की कहानी तो सभी को पता है लेकिन आप जैसे ययाति प्ले है गिरीश कर्नाड का, उन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव से उसको देखा है ना, तो वो पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए.
टू मॉडर्नाइज इट बेसिकली. एंड वो आप पोएट्री में वी कैन सी इन पोएट्री एज वेल राइट.
करेक्ट.
न्यू वर्ड्स हैव बीन कमिंग इनटू पोएट्री.
और दुनिया ना असल में क्या है कि जो दुनिया भी तो लगातार बदल रही है ना. लोग लगातार बदल रहे हैं. जो आज से 25 साल पहले इस एज के लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे वो आज के लोग बिल्कुल अलग है. पूरी दुनिया बदल चुकी है. तो उस हिसाब से आपका आप जो भी आइडिया ले रहे हो उस हिसाब से आपको इस दुनिया को प्रेजेंट करना है ना. आपको तो अगर मैं 25 साल पुराना प्ले ले रहा हूँ तो उस ऑडियंस को थोड़ी आपको दिखाना है, आपको तो इस ऑडियंस को दिखाना है ना. तो आप कैसे इस ऑडियंस के लिए अडेप्ट करते हो आइडिया, दैट मेक्स अ डिफरेंस.
आई वांट टू आस्क यू योर फॉर्मेटिव प्रोसेस कि आप अगर कोई भी नया आइडिया आपके दिमाग में आया हाउ डू यू मेक इट टू फ्रूएशन, हाउ डू यू एग्जीक्यूट दैट,
वो फ्लोर पे कैसे आता है.
हाँ, exactly.
क्या है कोई प्रोसेस की नहीं है
यार, वो तो वही है कि ट्रायल एंड एरर है. आप करते रहते हो, लिखते रहते हो, सुनाते हो, फिर अगर फ्लोर पे जा रहे हो तो जो फिर उसमें क्योंकि इट्स अ टीम वर्क कि मैं एक लाइन को ऐसे सोच रहा हूँ बट हो सकता है कि एक्टर ने बिल्कुल ही उसको एक दूसरा मीनिंग दे दिया. तो वो प्रोसेस में ही बनता है एक्चुअली.
एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि कैन यू टॉक अबाउट बिकॉज़ आई लाइक द वीक दैट वाज इट वेरी मच. और उसके बारे में अगर आप कुछ बात कर सके, सम इंसिडेंट, सम एनीथिंग.
यार मुझे लगता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था. और वो इतना क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे करंट टॉपिक्स पे था ना, तो उसमें एक तो वो कई तरह से चैलेंज करता था हमको क्योंकि हमने कल ही देखा है. मान लो ट्यूसडे को आपने कोई एक इंसिडेंट हुआ है और फ्राइडे को आपको शूट करना है, तो वो इसलिए वो बिल्कुल हमको ऑन द टोज रखता था कि खट 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 लिखना है, खट खट परफॉर्म करना है, उतना ही टाइम है कोई के कैरेक्टर पकड़ने के लिए. तो और उसकी बेस्ट बात ये थी कि उसमें हमारे ऊपर कोई ये नहीं था, सेंसरशिप नहीं था.
हाँ,
मतलब चैनल से भी हम जो हम लिखते थे वो करते थे.
गुड टाइम, गुड गुड टाइम्स.
हाँ तो वो तो वो उस सेंस में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था. और उसमें इम्प्रोवाइजेशन का बहुत मौका था कि उसी समय आपको और हम शूट करते थे केवल 3 घंटे में. वो न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में शूट होता था और वो हमको सिर्फ 3 घंटे के लिए देते थे. 9 से अपना 12 तक,
9 से 12,
12 बजे हमको
निकल जाना।
तो सब कुछ उसी में करना है, मेकअप ये वो सब सब एंकर लिंक। तो उस लिहाज से वो इतना सीखने को मिला कि फटाफट करना है, टाइम नहीं है कि मैं 2 दिन कैरेक्टर के बारे में सोचूं। उससे जो कमर्शियल काम है उसमें बहुत हेल्प हुई कि आपको तुरंत पता है कि अच्छा ये कैरेक्टर वैसा सा हो सकता
है, एफिशिएंसी बहुत बहुत नेसेसरी।
हाँ नहीं, और उसमें वो बढ़ जाती है, आपके पास एक लाइब्रेरी हो जाती है कि एक कैरेक्टर वैसा किया था उसको ऐसा इसमें ला सकते हैं, ऐसी ऐसा वॉइस ऐसा
ये ले सकते हैं।
और मैंने द वीक दैट वाजन के बारे में पूछा ही इसलिए क्योंकि इट वाज इट्स कोर ट्रू सटायर, राइट? वो पूरा सटायर ही हो रहा है। नाउ इट सीम्स लाइक डिस्टोपियन और बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हो, ऐसा लगता है वो।
हां,
सो बट वर यू स्कैर्ड एवर टू लाइक गो आउट एंड?
नहीं, नॉट एग्जैक्टली। एक दो बार मुझे आए थे फेसबुक पे ऐसे
थ्रेट्स
आए थे, और बट इतना कुछ नहीं हुआ।
याद है किस टॉपिक पे आए थे?
हाँ याद तो है लेकिन बता नहीं सकता।
बिल्कुल नहीं
याद है उतना काफी।
तो और हमने पोएट्री की बात की, राइट? एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट कि लोग आ रहे हैं तो उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव आना चाहिए, एंड आई लव पोएट्री माई सेल्फ। अहमदाबाद में बहुत सारे अच्छे अच्छे, सौम्य जोशी इफ यू नो सौम्य सर, बहुत ही बढ़िया पोएट है, वन ऑफ माय फेवरेट पोएट। उनके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था, तब उन्होंने मुझे बताया था कि हमने पूछा था कि व्हाट इज पोएट्री टू यू, तो उन्होंने बताया कि फॉर एवरीवन व्हेन समवन राइट्स द पोएट्री द फर्स्ट रीडर इज ऑलवेज द राइटर हिमसेल्फ।
करेक्ट।
तो ही डिफाइंड व्हाट पोएट्री वाज फॉर हिम, एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि व्हाट डू यू सी पोएट्री एज, क्योंकि हम जब बातें करते हैं when we see a film, वहाँ पे भी हम बोलते हैं कि क्या poetic बात कर दी, when we do this podcast, वहाँ पे भी कई बार लगता है कि हाँ क्या poetry चल रही है। So what is this poetry for you? और उससे भी technical में, when you sit down to write poems, to write songs, what is it that makes it poetry for you?
Very good question. तो मैं सोच रहा हूँ। तो बात ये है कि जो actually वो जावेद साहब ने कही हुआ कि poetry is a felt थॉट, कि जो आपने फील किया है वो जो जो एक ऐसा विचार जिसको आपने महसूस भी किया है, और जो जो आप महसूस कर रहे हो, एक्चुअली बहुत लोगों को लगता है कि जो भी महसूस किया वो पोइट्री है, मतलब अगर उसको आपने शब्द दे दिए तो। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें मेरे को हमेशा लगता है कि इसमें क्या मैं कोई नई बात कह पा रहा हूँ, क्या कुछ ऐसा है जो मैंने ही महसूस किया है, ऐसा मेरे लिए यूनिक है एकदम, और ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं, तो तब मैं वो लिखने की थोड़ा सा हिम्मत कर पाता हूँ।
अच्छा।
कि अदरवाइज मुझे लगता है कि इस पे तो लिखा ही है लोगों ने कि ये रेफरेंस है वो रेफरेंस है, तो मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा भाव, ऐसा इमोशन जो आपने महसूस किया है पर्सनली, और फिर उसको आप, फिर उसमें टेक्निकलिटी आती है कि आप उसको शब्द दे रहे हो, फिर उन शब्दों में क्या कोई रिदम है, क्या एक नैरेटिव है, तो वो, और फिर उन शब्दों में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है, उसका काट छांट के बाद जो आप ऑडियंस तक पहुंचा पा रहे हो, क्या वो ऑडियंस को एक नया एक एक पोइटिक एक्सप्रेशन दे पाएगा, ये सब चीज़ें मिलके डिसाइड करती हैं कि वो कविता होगी कि नहीं होगी।
और As I said, कि पोएट्री कुछ भी हो सकती है, राइट?
कुछ
भी, कोई भी लैंग्वेज भी पोएट्री हो सकती है।
करेक्ट।
डस द आइडिया ऑफ लैंग्वेज बॉदर यू बाय डिफरेंशिएटिंग कि नहीं ये पोएट्री हो ही नहीं सकती बिकॉज आई डोंट नो दिस लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारे पोएट्री रीडर्स दे रीड फ्रॉम एवरी लैंग्वेज, वो ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, समटाइम्स दे इवन गो क्रॉस द बॉर्डर्स कि मैं लैंग्वेज सीख लूंगा और फिर पोएट्री में पोएट्री करूंगा उस लैंग्वेज। तो डस दैट बॉदर यू कि अगर कहीं और से पोयम आ रही है तो इट वुड नॉट अफेक्ट यू एज मच ऐसा कुछ? What's your favorite language to consume poetry?
नहीं, मेरे क्योंकि मैं हिंदी में ही सोचता हूँ, तो मुझे हिंदी में के अलावा मैं नहीं लिख सकता, लेकिन मुझे लगता है कि भाषा शब्द ये ना ये आउटर चीज़ है, मेन चीज़ है थॉट, मेन चीज़ है भाव, वो अगर पोइटिक है तो वो आप किसी भी भाषा में लिखो वो पोइटिक ही होगा, तो बाकी सारी चीज़ें तो आउटर चीज़ें तो वो है, लेकिन मेन चीज़ है कि वो जो आपने महसूस किया है, वो क्या आप ऑडियंस तक पहुंचा पा रहे हो?
इज देयर पोएम जो आपके साथ रह गई हो, वैसे बस गई हो कि इफ समवन आस्क्स यू कि एक पोएम सुनाइए तो आप वही सुनाओगे?
रेंट फ्री रह गई हो
कोई कोई
किसी और की या मेरी?
किसी आपकी आपको हाँ आपकी सुनाइए
आपकी खुद की।
चलो मैं एक मेरे को
हाँ चलो थोड़ा सा आएगा
एक क्योंकि यहाँ सब बहुत सारे थिएटर वाले और ये लोग हैं तो मैं मेरी एक कविता है जिसका नाम है एक बड़े शहर का स्क्रीन प्ले।
वाह वाह, ये आपने किसको भेजी हुई है?
नहीं नहीं ये तो बहुत सारे लोगों को भेजी है नहीं लेकिन ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा गंभीर कविता है। एक बड़े शहर का स्क्रीन प्ले। एक बड़े शहर की शाम। एक अमीर औरत एक महंगा कांच का ग्लास खरीदती है और एक गरीब शायर एक सस्ती शराब की बोतल। अमीर औरत को वो कांच का ग्लास अपने दोस्तों को दिखाना है इसलिए वो अपने घर पर एक पार्टी रखती है। गरीब शायर के पास भी अब जाने के लिए कोई और जगह नहीं है इसलिए वो भी शराब लेकर अपने घर आ चुका है। ये विजुअल है थोड़ा
जी।
बड़े शहर की आधी रात। अमीर औरत के घर की पार्टी उरूस पर है। सब मेहमान ग्लास की तारीफ करने के बाद अपने अपने नशे में डूब चुके हैं। गरीब शायर भी सस्ती शराब के नशे में धुत हो चुका है। लेकिन अब वो अकेला नहीं है, उसे एक बीमारी है, अपनी कल्पना में लोगों को देख लेने की बीमारी। और इसी बीमारी के चलते वो देख पा रहा है अमीर औरत के घर की पार्टी। पार्टी में एक उभरता हुआ गायक एक गीत गा रहा है, गरीब शायर का लिखा हुआ गीत। एक उदास गीत जिस पर नशे में धुत लोग मुस्कुराकर झूम रहे हैं। और तभी अंत के ठीक पहले उभरता हुआ गायक गीत का एक शब्द बदल देता है, एक महत्वपूर्ण शब्द, जहां उसे गाना चाहिए था तेरे मेरे बीच में सब बाजार है, वो गा रहा है तेरे मेरे बीच में सब प्यार है। ये सुनकर गरीब शायर चीख पड़ता है और उसकी चीख से अमीर औरत का कांच का ग्लास टूट जाता है और कांच का एक टुकड़ा अमीर औरत के हाथ की नस काट देता है। उसके हाथ से खून बह रहा है लेकिन पूरी पार्टी इतने नशे में डूब चुकी है कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। बड़े शहर की अगली सुबह पुलिस ने गरीब शायर को अमीर औरत के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अगर वो चाहता तो रोक सकता था अपनी कल्पना।
बढ़िया।
तो ये है कहानी।
मेरे 5 क्वेश्चन इस मार दिया। वेरी ब्यूटीफुल।
थैंक यू दोस्तों।
एंड विद दैट आई थिंक वी शुड हां
सर आपने अभी की थोड़ी मतलब इस पॉइंट के बारे में क्या कहा था कि चीजों को नया कैसे पेश किया जाए। और अन्य फ्रेंड आपको ये लगता है कि ये चीज पहले नहीं हुई है तो उसको नए तरीके से कैसे पेश बट फिर वो आज सिर्फ कॉम्पिटिटिव नहीं हो जाएगा बिकॉज काफी बार अभी ये हो रहा है कि लोग सिर्फ कॉम्पिटिटिव या सबसे अलग दिखे ऐसा ही आर्ट पेश करने की उसमें अपने रियल एक्सप्रेशन को मिटा देते नहीं यार ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो मुझे भले ही इसमें भाव आ रहा है लेकिन मैं उसको एक्सप्रेस इस तरह से नहीं करता कि ये लोग इस तरह की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे या फिर इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वो आर्ट विच शुड बी अ थिंग ऑफ एक्सप्रेशन वो अ थिंग ऑफ कॉम्पिटिशन बनता जा रहा है।
नहीं मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ये अगर वो इस बात से ही आप छोड़ दे रहे हो वो थॉट कि तो फिर वो थॉट इतना बड़ा है ही नहीं इसका मतलब वो वर्थ इट है ही नहीं तब तो ये आप खुद भी जानते हो जो जो वर्थ इट थॉट होगा वो आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं वो आपको लगेगा कि यार ये तो कहनी ही है बात।
बट फॉर्म ऑफ सेइंग इट,
हाँ
द वे ऑफ सेइंग इट, वो जस्ट बिकॉज़ क्या लोगों को नया लगना
नहीं नहीं मतलब मैं ही कह रहा हूँ कि कोई भी थॉट जो आप इस परसेप्शन से देख रहे हैं कि लोगों के लिए वो है ही नहीं, वो वर्थ इट थॉट है ही नहीं, जो आपको लगेगा कि ये मुझे कहना है वही है, बाकी तो बाकी आप किसी और के लिए लिख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन जो आप अपने लिए लिखोगे उसमें आप ये कभी सोचोगे ही नहीं कि ये लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। जैसे उन्होंने कहा ना कि सबसे पहले तो वो खुद ही है, आपको जब लगेगा कि हाँ यार ये बात है कहने लायक, तभी आप उसको अपने पास रखोगे, नहीं तो आप खुद ही छोड़ दोगे। ऑडियंस तो बहुत बाद में आएगी, आप पहले पहली ऑडियंस तो आप खुद हो ना।
नहीं, पर आजकल इंटरनेट पे भी एक टर्म वायरल हो रहा है कि ट्रॉमा ओलंपिक्स,
हाँ
व्हिच इज
ये
लाइक
मुझे नहीं पता क्या होता है
ट्रॉमा ओलंपिक्स। ट्रॉमा ओलंपिक्स इज लाइक पीपल यूज इट टू डिस्क्राइब कि म्यूजिक सीन में जो छोटे छोटे जो इंडिया आर्टिस्ट्स है दे ट्राइंग टू प्ले ट्रॉमा ओलंपिक्स, जिसमें वो दिखाना चाहता है कि वो मुझे ये दर्द है, यानी लाइक इन द सैड सॉन्ग्स दैट दे प्रेजेंट टू द पब्लिक।
मेरा कहना है कि अगर आपके आइडिया ही इतने छोटे हैं तो फिर कुछ नहीं हो
फेर,
सकता
फेर, फेर।
कि ऑडियंस के लिए, मैं कह रहा हूँ अपने लिए करोगे तो ऑडियंस के लिए अपने आप हो जाएगा।
क्योंकि आई ऑल्सो मिसअंडरस्टूड वेन यू सेट दिस अर्लियर, और मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुआ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से बेसिकली इज कि व्हेन यू आर अ क्रिएटिव पर्सन ट्राइंग टू राइट समथिंग, ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग, आपके अंदर ही एक ऐसी चुल शायद मच गई होगी कि इफ आई एम सेइंग दिस तो कुछ नई तरह से अपने आप को पहले बताता हूँ, एंड डू नॉट
इफ यू कांट एंटरटेन योर सेल्फ देन यू कांट एंटरटेन अदर्स। मतलब सबसे पहले आपको लगना चाहिए कि ये बनी बात, और वो अपने आप से आप झूठ नहीं बोल सकते। कई बार आपको पता है कि अरे नहीं बनी बात, लेकिन लोगों को इतना होता है ना परफॉर्म करने का कि सुना तो देता ही हूँ, मुझे भी पता है अच्छा कच्चा पक्का है तो वो
such a nice formation of sentence.
Yeah, exactly.
But हाँ, the point basically was that only कि when you are portraying something, तो जब हम screenplay भी लिखते हैं, हम poetry भी लिखते हैं, तो एक feel आ जाती है कि हाँ, this is it,
correct.
This is something. Yeah, and that's what I was going to say before you. हाँ, तो the podcast is basically over. Now we can open up the
हाँ few AMS questions.
हाँ, मेरे को जो पूछना है. It's okay. So I am going to say that.
Yeah, yeah, yeah. तो किसी को भी कोई क्वेश्चन हो यू कैन रेज योर हैंड,
और नहीं हो तो कोई बात नहीं
आपको सिर्फ बात करनी हो यू कैन रेज योर हैंड।
एनीवन,
चलो वाह,
गिव गिव देम 3 मिनट्स। हर शो में ऐसा
हर शो में ऐसा होता है,
शुरू में से सोचते हैं कि हाथ उठाए कि नहीं उठाए,
पहले कोई और कर ले फिर मैं,
हां फिर मैं,
हां।
और ये थिएटर में इम्प्रोवाइजेशन के लिए भी जब डायरेक्टर कहता है कि आओ करो, तब भी ऐसे ही होता है कि तू जा
कर ले तेरा।
हाँ,
I don't think so, आज कोई है।
चलो बढ़िया है,
किसी को कुछ नहीं पूछना,
इट्स ओके, मतलब
इट्स ओके, कुछ नहीं है तुम पे,
प्रेशर नहीं है। बाकी तो शाम को आप लोग देखोगे ही प्ले, प्ले मतलब गाने सुनेंगे आप लोग, तो थिएटर के गाने हैं। और
हाँ सर, वो हम एंड करें उसके पहले थोड़ा उसके बारे में कुछ बता दीजिए, और करो थिएटर के बारे में एक छोटी सी सिनॉप्सिस, वन लाइन।
नहीं नहीं, मैंने वन लाइन तो पहले ही दे दिया कि वो मेरे पुराने नाटकों के गाने हैं, और उसमें कई सारे गाने हैं जो मतलब विदाउट एनी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आ जाएंगे, तो वही उसका वो है। जैसे उसमें एक आदत गाना है, मैं उसे दो लाइन आपके पॉडकास्ट के लिए सुना देता हूँ, तो वो आदत के बारे में एक प्ले में गाना बनाया था कि हमारी आदतें कैसी होती हैं, तो उस वो ऐसे है कि आदत है हमको जैसे हैं वैसे ही होने की, आदत है हमको चादर से बाहर रख कर पांव सोने की, आदत है हमको
क्या बात है।
थैंक यू, मजा आया,
थैंक यू,
गुड फन, थैंक यू।
यस, और अगर आपने वीडियोस लिए हो, फोटोज लिए हो, डू टैग पॉपपीडिया, डू टैग गोपाल दत्त सर, यस
प्लीज,
और सब्सक्राइब करना पॉपपीडिया पॉडकास्ट को प्लीज,
यस
थैंक यू
थैंक यू थैंक यू